ਹੁਣ ਬਸ ਮੁੰਡਾ ਚੌਲ ਮਾਰਿਆ ਠੀਕ ਸਦਾ ਓਮ ਓਮ ਹੈ ਆਖਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੁਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤੇ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਉਣ ਮਾਤਾ ਈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਨੋਏ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਚੰਦ ਨੂਰ ਭਰਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨੰਨਾ ਚੋਰ ਜੋ ਜਗ ਤੇ ਸਾਜਿਆ ਤੂੰ ਨੰਨਾ ਚੋਰ ਜੋ ਜਗ ਤੇ ਸਾਜਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਗ ਤੇ ਦਾਲ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਓਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾਖਾ ਨਹੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖੋ ਸੱਚੇ ਕਾਸ਼ ਦੀ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਪੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੇ ਲੀਏ ਮਨ ਕੋ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਟਾ ਕਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾ ਲਓ ਇਹ ਕਾਦਰ ਚਿੱਤ ਹੋਕਰ ਜਦ ਹਮ ਬੈਠੇਂਗੇ ਐਸੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਗਾ ਜੋ ਵਾਣੀ ਸੇ ਪਰੇ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਵੀ ਹਮ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਏ ਇੱਕ ਬਾਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਠਹਿਰਾਓ ਮੈਂ ਆ ਜਾਇਆ ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਛੋੜ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਾਸਤਿਕ ਲਾਭ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਗਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਮਹਾਨ ਡਾਕਟਰੋਂ ਕਾ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਸਰਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚੀ ਆਤਮਾਏ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਨਕੋ ਯੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੜਤਾ ਹੈ ਐਸੇ ਕੌਣ ਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੇ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਹਮਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਤੋ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਿਤ ਲੱਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਸੇ ਨੰਦਾ ਚੌਕ ਸੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਵਾਸ ਥਾ ਸੁਸਾਂਝ ਕਲਾਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਬਹ ਫੂਲ ਲੈ ਕਰ ਓਮ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਤੇ ਸੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਹਕੀਮ ਥੇ ਸਭ ਕੋ ਇਲਾਜ ਕਰਤੇ ਥੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੇ ਹਾਂ ਦੇਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਵਸ਼ ਸੰਤਾਨ ਮਿਲੇਗੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਹੈ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਵਰਸ਼ੋਂ ਤੱਕ ਬਾਪੂ ਓਮ ਜੀ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਤੇ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮ ਕਹਿ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀ ਉਸੇ ਮਾਨਸੀ ਬਹੁ ਤੋ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਵ ਸੇ ਓਮ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਾਡੀ ਦੋ ਜਹਾਨ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇਖਾ ਮਨ ਮੇਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ ਪਗਨੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਤੇ ਹੋ ਗਰਮਤ ਕਾਮ ਸਭ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗੂ ਯਾ ਤੋ ਵੋ ਜਾਣਤੇ ਨਾ ਹੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੇ ਕਿਉਂ ਕਹੂੰ ਓਮ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕੀ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨੰਦਾ ਚੌਂਦੇ ਪੈਦੇ ਸਾਰਾ ਬਾਲ ਥਾ ਓਮ ਜੀ ਚੱਲੇ ਪੰਡਿਤ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਓਮ ਜੀ ਵੀ ਠਹਿਰ ਗਏ ਆਮ ਕੇ ਪੇੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਮੁਝੇ ਬਾਪੂ ਉਦਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾਈ ਓਮ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਤੋੜਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਗੋਦੀ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ प्रसन्न हो गए, समझ गए, उठा लिया फिर दोबारा जोड़ी में डाला, फिर उठा लिया। ये संतों की रमत को जान नहीं सकता है। घर में संतान पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ, थोड़े दिन बाद शरीर छोड़ गया, आम उठा लिया था ना, पत्नी और निराश हो गई, बेटा भी हुआ इतने सालों बाद, फिर भी जो है राह नहीं है, जो प्रभु इच्छा। जो लोग परमात्मा पर विश्वास करते हैं, जो निष्ठावान हैं, जो सदैव अपने आप को समर्पित कर चुके हैं, कभी गिरा शिकवा नहीं करते। राधे मुझमें जिस भी तरी राह है, गुरु अंगद देव जी महाराज को तट पे तवे पर बिठाया था ना, ऊपर गर्म रेत डाल रही थी, यही कहते थे मियां मीर आए, मुसलमान बड़े आलम फकीर थे, कहने लगे कहो तो मैं औरंगजेब के राज की ही शेर बजा दूं, मैं भी बजा सकता हूं, देखो मेरे सिर पे जब रेत डाल रही है, गर्म या ठंडी है, बिल्कुल ठंडी है। तो राधी है उसमें जिस भी तरी रहा है, ये तो बड़े लोगों की गात है, तेरा बाना मीठा लागे। अब पंडित जी ऐसे ही भक्त थे, गिदा शिकवा कोई नहीं किया, समय गुजरता गया, सेवा निरंतर जारी रही। ये नहीं मेरा काम हुआ नहीं, हम संतों की परीक्षा लेते हैं, प्रतीक्षा नहीं करते, हम कहते प्रणाम करे परिणाम हमें फट मिल जाए। भाई सबर करो, संतोष करो, देखो सही उनको हम जान सकते हैं क्या। थोड़ी बात फिर ओम जी गए, अब थोड़ी में दो आम डाल दिए और कहा देख भाई पंडित जी, एक हमारी अमानत है, एक जो आम है ये हमारी अमानत है, दो बेटे पैदा हुए, तो रामदास जी महाराज गुरदास राम जी और पंडित देवदास जी, अपनी अमानत थी ना उनकी। समय आया, कैसा समय आया, महाराज जी ने लाहौर में एमए इंग्लिश की डिग्री हासिल की थी, महान विद्वान थे, कीर्तन हम सब ने देखा, जब कीर्तन करने लगते हैं सारी सारी रात कीर्तन करना, ओम महाराज जी हराम जी श्रद्धा राम जी महाराज ने चिट्ठी लिखी कि मैं शरीर छोड़ने वाला हूं, मुझे हुक्म आ गया है, मैंने शरीर त्यागना है, आप आके ड्यूटी दे लो, क्योंकि नॉमिनेशन आपकी हुई है, ऊपर से हुक्म आपका हुआ हुआ, हाथ जोड़ दिए महाराज मुझे क्षमा करो, आप बाल ब्रह्मचारी, आप महान त्यागी, आप दरबार का पानी भी नहीं पीते हो, मैं गृहस्थी आदमी हूं, मैं काबल नहीं हूं, मैं योग नहीं हूं, ये तो मालक जानते थे ना, ओम जी ने पहले नियुक्ति कर रखी थी, आपको आना पड़ेगा, यहां सब पर बंद है, चिंता मत करो। लेकिन महाराज जी श्रद्धा राम जी के शरीर रहते हुए मैं योग नहीं हूं, मैं नहीं आऊंगा, आए नहीं। जब महाराज जी शरीर छोड़ा, सारी संगत की प्रार्थना थी, सारे कष्टवानों को पता था, माँ जी देशराज जी थे अमृतसर में, माँ खान चांद जी थे सामने, कहा महाराज ये ड्यूटी तो आपको लेनी पड़ेगी, ये श्रद्धा राम जी का नहीं ओम जी का हुक्म है, आप अमानत हैं दरबार की, शरीर जो है ना ये वास्तव में अमानत है परमात्मा की, हम सबका दायित्व है, हमारा ये फर्ज बनता है कि जिसकी अमानत है ना, अगर आप हम किसी से कर्जा लें, आपके पास अमानत रह जाए वापस लेंगे गुनाह तो नहीं है ना, आप अमानत हैं, आपको यहां आना पड़ेगा। स्वीकार किया, गद्दी संभाली, थोड़ा यथा मिला सेवा करने का, तन मन धन पूर्णतः समर्पित कर दिया, दिन रात एक ही लगन, एक ही आशा, एक ही लक्ष्य कि मैंने ये जो ड्यूटी मुझे मिली है ठीक प्रकार से निभा पाऊं, मैं अपने आप में अपने आप को फेलियर ना समझूं, मेरे से कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके लिए मुझे आत्मग्लानि हो, क्योंकि आत्मग्लानि का शिकार आदमी जो है ना वो सह नहीं सकता है, बाकी सब हो जाएगा, सेल्फ कंडमनेशन। अगर हम पाप करते हैं ना, गुनाह करते हैं, आत्मा की आवाज आती है ये गलत कर रहा है, अवहेलना कर देते हैं हम, लेकिन ये नहीं पता ये पाप बन जाएगा, पाप बनेगा तो दुख भोगना पड़ेगा। इस बात का विशेष तौर पर सूक्ष्म रूप से ये ध्यान रखा कि मेरे जीवन में यहाँ रहते हुए कोई जाने या जाने में भूल ना हो जाए, इतने मोहताज रहने सतर्क रहे। और कीर्तन जब करते थे लगातार घंटों, अविरल आंसू बह रहे हैं, प्रेम के आंसू बह रहे हैं, तीन तीन चार चार घंटे लगातार कीर्तन करते रहना, थोड़ बहुत की होश ही नहीं है, ऐसे महान सच्चे पातशाह की लगन थी, ऐसे महान कृपा हुई बापू नारायण जी की, बापू श्रद्धा राम जी महाराज की, तो ऐसी आत्माओं का संसार में आगमन बड़ा मुश्किल से होता है। ये जोत ढूंढ के लानी पड़ती है परमात्मा के यहाँ से कि कौन सी ऐसी जोत है जो संसार के जाकर प्रकाशित करेगी, जो लोगों को रोशनी दिखाएगी, जो लोगों को धर्म पारायण करेगी, जो लोगों को रास्ता बताएगी। ऐसी महान आत्मा बापू दास राम जी महाराज, और अपनी जबान से कुछ कहना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, अंतर्यामी इतने कि बापू सत्ताज हमारे आए नहीं है, गुरुपुर वाले ये बचपन जब पढ़ते थे ना इनके सिर में दर्द होती थी, कर्नल साहब मिलिट्री में थे, कई डॉक्टरों को दिखा दिया, दर्द ही नहीं गई, तो दास राम जी पास आ गए, हम उन पर बिठाया, ऐसे बात पकड़े ये दर्द मुझे दे जा, कहते आज तक मुझे दर्द तो हुई नहीं, हम बापू गुरदास राम जी महाराज, ये चौधरी शीश राम है हमारे रामराज में रहते हैं ना, आप सब जानते हो रामराज वाले, उनका बेटा मुझे सुना रहा था, मैं दसवीं पास करके नंदा चौर आया, पिताजी वहीं थे, सेवा करते थे बापू जी की, बाप कहने लगा महाराज ये बच्चा दसवीं का इम्तिहान दे के आया है, ये क्या करेगा आगे, उस रात राम जी भाई कहने लगे सुनो भाई इसकी चिंता मत कर, ये तो एयरफोर्स का ऑफिसर बनेगा, दसवीं पास करके बच्चा आया है महाराज कहने एयरफोर्स का ऑफिसर बनेगा, कहने आज मैं एयरफोर्स का ऑफिसर हूँ। तो कितनी निगाह जो है दूर की है, अंतर्याम का है, कभी शो नहीं किया। हमारे यहाँ कथा यही है कि महाराज प्रदर्शन से दूर रहते अपने आप, श्रद्धा राम जी महाराज से किसी ने कहा महाराज वो संगत वहां इतनी आ रही है, वहां इतनी आ रही है, क्या हो रहा है, मैं कहते बेटा मैं कहना मेरे को कोई भी ना हो रहा, हम बापा श्रद्धा राम क्या करनी देर करके, अरे बाबा जिज्ञासु एक ही बहुत है, जब देखता है गुरु के शिष्य के अंदर मेरी झलकी आ गई है, शिष्य के अंदर मेरी झलकी आ गई है तो एक रूप हो जाते हैं, तो बापू श्रद्धा राम जी महाराज ने गुरदास राम जी को तल रूप बना दिया, कोहरा था कोहरा आग में डाल दो राक्षस हो जाता है, रूपांतरित हो गया। ऐसे ही जब पूर्ण गुरु मिल जाएंगे शिष्य को अपने जैसा बना देंगे, रूपांतरित कर देंगे, अपना आप भूल जाएगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया था, क्या मुझे नहीं पता, मैं एक मात्र स्वभाव को जानता हूँ, मेरा दायित्व गुरु की आज्ञा पालन करना है, मेरा फर्ज गुरु की मदद अनुसार चलना है, मेरी ड्यूटी है कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसको जीवन पूरा कर जाऊँ, ये ध्येय था, इस ध्येय को निभाया बापू गुरदास राम जी महाराज ने। ऐसी महान शक्ति होते हुए भी कभी शो नहीं किया। हम रात को 12 एक बजे तक बैठ के महाराज की चरण दबा के जाते थे नंदा चौर में, बड़ी कृपा थी उनकी, हमें साथ रखा, सवेरे 3 बजे उठ के हमन में बैठ जाते थे, मैं अक्सर सवाल करता था महाराज जी सौंदे कराओ सोते था वो, आप हंसते थे जवाब देते थे, आप मुझे पता लग गया कब सोना होता था, तो ऐसा है अपने जीवन में पूर्णतया समर्पित होकर अर्पण करके गुरु को निष्ठावान भक्त होकर बापू के सच्चे पुत्र बनकर जीवन निभाया और बड़ी मुश्किल बड़ी दुस्तर सत्संग में आप आते हो ना, ये बड़ी महान रहता है, ये सारे श्वास सफल हो जाएंगे। कहते यहाँ क्यों आना है? कुछ लोग तो ऐसे घर की सोच रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो दुकान की सोच रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाम का सिमरन कर रहे हैं, जिनका ध्यान ईश्वर की ओर है, जो सदा महाराज के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। कहते उनके श्वास से जो श्वास निकल रहा, जो लोग सिमरन कर रहे हैं उनकी जो सांस बाहर आती है उसे वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, उसे सारा वायुमंडल पवित्र हो जाता है। इस वास्ते हम सब क्या करें कि जब भी यहाँ बैठे सिमरन करें, ध्यान से सुने, ताकि हर सांस जो नहीं भी सिमरन कर रहा उसके अंदर भी समा जाए राम, के अंदर भी ओम नाम समा जाए, ऐसा अभ्यास करना। पुराणों की कथा, एक एक व्यापारी थे बने, सारी उम्र बेईमानी की थी, झूठ बोला, निकृष्ट काम किए। एक दफा महेश्वरी में आ गए, उज्जैनी में, वहां नर्मदा नदी बहती है ना, वो कार्तिक का महीना था, आने वाला ना, बड़ा पावन महीना गिना जाता। तो वहां देखा कोई लोग सत्संग कर रहे हैं, कोई भजन कर रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई वेद अभ्यास कर रहे हैं। उसका मनमान रख गया, कहां को पाप में जीवन था, निकृष्ट जीवन था। जब गुरु के प्यारों को देखा, संगत को देखा, मां मन रख गया, गया नहीं, घर जाने की इच्छा नहीं की उसकी। ऐसा सुंदर वातावरण मिला, और जब वातावरण अच्छा मिलता है, सत्संग अच्छा मिलेगा, मन जो है ना शुद्ध होता चला जाएगा, मन की मैल उतर जाएगी। सत्संग में यही गुण है, लेकिन सत्संग मिलेगा जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा सबको हुई, बिन राम जी की कृपा से सत्संग मिलता नहीं है। तो बड़ी कृपा, आज हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए। तो एक महीना वहां सारी संगत में प्रभु के प्यारे में गुजारा, वही मृत्यु हो गई। पुराने कथा है, पुराने जहाँ मृत्यु हो गई, यमराज के पास जाना पड़ता, हमारा लेखा जोखा सब देखा जा रहा है। अरे चित्रगुप्त बैठे हैं ना, गुप्त रूप से हमारे चित्र का चित्रण हो रहा है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो देखा जा रहा है, कंप्यूटराइज हो रहा है। वहां उसकी कचहरी में जाकर खाता खुलेगा, वहां न्याय है, अन्याय कोई नहीं है वहां। तो जब वहां मृत्यु के बाद यमदूत के अंदर के महाराज ने सारा उम्र गंदे काम किए हैं, बेईमानी की, झूठ बोला, सबको दगा दिया, ठगी बाजी की, यमराज ने आज्ञा दी इसको जो कड़ा है तेल का गर्म से डाल दिया जाए, इतना पापी है ये। ठीक है, कहते जब डाला कड़ाए में वो तेल का कड़ा ठंडा हो गया, तो ये तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, ये यहाँ नरक में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। नारद जी आ गए, नारायण नारायण करते हुए कहने बात ये, यमराज इसको तुम नरक की यादना नहीं दे सकते, इसने जीवन की अंतिम घड़ियां सत्संग में गुजारी हैं, भगवान के नाम लेने के मानों के साथ रहा है, ये प्रभु नाम सुनता सुनता शुद्ध हो गया है, तो इसलिए ये नरक का अधिकारी नहीं है। अगर नरक है तो क्या कहते हैं, नरक मिल जाए तो नरक की दिखा दो बार एक बार, इसकी सजा यही है कि नरक घुमा लो, नरक में जाएगा नहीं। तो ऐसा है सत्संग का प्रभाव, ऐसी है संगत का असर, ऐसे प्रभु नाम जीवन का फायदा। तो जब भी जीवन में कहते हैं आत्मविश्लेषण करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, अपने आप को ठकोते रहना है, हैमलिंग करते रहना है, कहीं जीवन में ऐसा ना हो जाए कि कहीं नरक की यादना देखनी पड़े। महापुरुषों के दिन मनाने का जो वास्तविक लाभ होता है, क्या अर्थ होता है उनके जीवन को हम सोचें विचारें, उन्होंने ऐसे कौन से काम किए जो आज उनकी जय जयकार हो रही है, वो है सेवा सिमरन समर्पण। सारा जीवन सेवा की समर्पित हो गए बापू के, और आज जय जयकार हो रही है। गुरु के दास नाम भी जैसा था वैसा ही एक्शन भी था, वैसा ही कृत्य भी था। गुरु के दास बनकर है ऐसी दासत्व भाव, दासा भाव धरे मन जो मर, ठाकुर नाम ध्यावत है के जो दासा भाव बांधकर, दास का भाव रखकर परमात्मा का नाम सुमन करेगा, दुख ना भूख रहे जिनको, ना कोई दुख ना कोई भूख। और नाम क्या है? कल्प वृक्ष काम धेनु चिंता मानी। जब समुद्र मंथन हुआ था ना, किन्नी चीज निकली थी, काम धेनु ऐसी गऊ है जिससे जो मांगो मिल जाएगा। चिंता मानी जिसके पास हो उसके पास कोई चिंता ही नहीं है। और कल्प वृक्ष आप जानते हैं स्वर्ग में जो पेड़ है देवता उसकी खुशबू से आराम लेते हैं और जो मां को मिलता। तो कहते हैं कि राम का नाम, ईश्वर का नाम, प्रभु नाम चिंता मनी भी है, काम धेनु भी है, कल्प वृक्ष भी है। जीवन में यदि सुख चाहिए, शरीर में दुख आएगा कोई बात नहीं, शरीर तो भोग भोगने के लिए है। प्रारब्ध कर्म है हमारे कि चिंता नहीं करनी है। और आज का होता क्या है, फलाना आदमी चला गया जी, और उसने तो जाना ही था जी, मरना ही था जी। दूसरों पे लागू होता है, अपने आप नहीं सोचते, मुझे भी कुछ करना, मेरा क्या होगा, अपना नतीजा नहीं सोचते। महात्मा बुद्ध जब पैदा हुए, राजकुमार से सिद्धार्थ जो उसी ने कहा ये महान फकीर बनेगा या राजा बनेगा, पिता ने सोचा ये मेरा बेटा है, ये राजा है, ये फकीर बन गया तो राज कौन संभालेगा। महल के अंदर ही लालन पालन हुआ, महल के अंदर ही पढ़ाई हुई, महल से बाहर निकल नहीं दिया। एक दिन जब बड़े हुए नौजवान हुए, मंत्री ने कहा चलो बाहर घूमाते हैं। क्या देखा, एक रोगी आने जा रहा था, बीमार था। पूछा ये कौन है, कोई देखा था नहीं रोगी, ये रोगग्रस्त है, ये बीमार है। अच्छा ये क्या होती बीमारी, जब कोई पाप करता है तो बीमार हो जाता है। आगे चले, एक बूढ़ा आदमी जा रहा था, ये क्या है, ये महाराज बुढ़ापा है, पहले बच्चा बाल अवस्था में होगा, किशोर अवस्था में होगा, युवा होगा, अधेड़ होगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा। आगे देखा मुद्रा जा रहा है, ये क्या, इसके बाद मर जाएगा। सारी बातें सुनी पहली दफा, मन में हो गया अपने पे लागू की ना, मैं भी बीमार हो सकता हूँ, मैं भी बूढ़ा हो सकता हूँ, मैं भी मर जाऊंगा, ये जो काम खराब है। जब ये विचार आ गया सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ सिद्धार्थ नहीं रहा, पुरुषोत्तम की ओर चल दिया, चल दिया निर्वाण लेने के लिए लोगों को, कैसे महात्मा बने। तो भाई अपने पे भी लागू करो, जो कुछ औरों के साथ हो रहा है मेरे साथ भी हो सकता है, ऐसा विचार करके जीवन को नियंत्रित रूप से संभाल के चलना है। ये विशेष बात का ध्यान रखना है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन फुल न सोई। बिना राम जी की कृपा से सत्संग नहीं मिलता है, ये घड़ियां लेखे लग जाएंगे। आज अमल पापी कथा सुनिए ना, सारी उम्र पाप किया, संत आ गए, संत कल्याण करते हैं ना। कई बच्चे थे मुसलमान वैश्य को ले आया था ना, फिर बच्चा होने लगा था, लोगों ने मजाक किया, उसका सदा वर्त लगा रहता, उसका नाम नारायण रख दो, बच्चा जो होगा उसका नाम नारायण रख दो, नारायण रख दिया। कि हम दूर जब सामने आए, छोटे बच्चे से बड़ा प्यार था, तो डर के मारे हे नारायण पुकारा, कि हम दूर छोड़ गए ना। तो अजामल पापी जग जाने निमग नारायण सारा, कहे नारायण के चिंता अपनी चौबी उतरस पारा। अजामल की कथा सुन लो, सुनते हम तो भाई नारायण का नाम, ओम जी का नाम, राम का नाम, वैगुरु नाम, सत नाम, सज्जन ठाकुर था ना, उसका काम क्या था, ठगेबाजी। घर में जो संत महात्मा आए या बड़े आदमी आए, आओ जी बैठो जी, बाहर बड़ा महल बना रखा था, बड़ी सेवा करनी, और रात को नीचे जाके गला घोट के मार देना, ਮਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਥ ਛੱਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਕੇ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਿਖਾਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਸ਼ਾ ਚੰਨੇ ਲੱਗੇ। ਸੱਜਣ ਠਾਕਿਆ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਮਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਾਰ ਪਹਿਨ ਰੱਖੇ ਪਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਦੇਖ ਹੱਡੀਓ ਕਾ ਢਾਂਚੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਹੱਡੀਓ ਕੇ ਢੇਰ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਲੋਕੋ ਕੋ ਦਿਨ ਮੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਲੋਟ ਲੈਣਾ। ਖੁਸ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਐਸਾ ਠੱਗ ਹੈ, ਐਸਾ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਹੈ ਇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨ ਸੁਬਹ ਉੱਠੇ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚਲਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲੋ, ਜਾ ਕੇ ਪੇੜ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੱਜਣ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੇਠ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਭਾਗੇ ਹੋਏ ਆ ਗਏ, ਕਾਂ ਭਾਗ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋ ਛੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਮ ਕਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੋਂ ਨਿੰਦਾ ਜਲਾ ਲਓ, ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਫਰਕ ਪੜੇਗਾ, ਆਗ ਕਾਂ ਸੇ ਲਾਓਗੇ, ਆਗ ਕਾਂ ਸੇ ਲਾਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਰਦਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਆਗ ਲਿਆ, ਮੁਝੇ ਜਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੁੰਡੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਸ ਸੱਜਣ ਦੇਖੋ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋ ਯਮਦੂਤ ਪੀੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ, ਹਮ ਇਸਕੋ ਲੈਣੇ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ? ਜਬ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਗਾਰੀ, ਤੋ ਦੇਖਾ ਕਿ ਅਮਦੂਤ ਉਸਕੋ ਛੋੜ ਗਏ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਆ ਗਏ। ਯੇ ਕਿਆ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਅਭੀ ਇਸਕੀ ਪਿਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸਕੀ ਮਾਰਪਾੜ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਭੀ ਇਸਕੋ ਯਮਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋੜ ਗਏ। ਪਾਰਸ਼ਦੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੂਰਖ, ਤੂੰਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਪ ਕੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਬੈਠਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਂਗਲੀ ਕੀ ਇਸਕੀ ਤਰਫ, ਇਸਕੇ ਪਾਪ ਕੱਟ ਗਏ, ਯਮਦੂਤ ਛੋੜ ਗਏ। ਤੋ ਸੰਤੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ ਸੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੇ, ਯਮ ਭਾਗ ਜਾਏਗੇ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਆ ਜਾਏਗੇ, ਬੇਮਾਨ ਆਏਗੇ। ਅਬ ਭਗਤੋਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਮੁਝੇ ਆਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਹਮਾਰੀ ਬੀਬਾ ਇੰਦਰਾ ਦੇਵੀ ਥੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਚਰਨੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗਾਠੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀਰ ਛੋੜ ਗਈਆਂ ਜਦ ਮਾਈ ਕਿਰਿਆ ਪਿਆ ਆਏ ਬੇਟੇ ਕਲਾਸ਼ ਨੇ, ਮੁਝੇ ਆਜ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੀ ਬਿਬਿੰਦਰਾ ਕੋ, ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਓਮ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਮੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋਲ ਬਾੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਬਾੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਂ ਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਇਹ ਸੂਰਜ ਕੈਸੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਨ ਉਤਰਾ ਨੀਚੇ, ਇੱਕ ਵਿਵਾਨ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਬਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ। ਬੀਬੀ ਕਾ ਦੇਵਰੂਤੋਂ ਸੇ ਰੁਕੋ ਭਾਈ, ਮੁਝੇ ਆਜ ਇਤਨਾ ਜੋ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੇ ਮਿਲਾ, ਉਨਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਤਭੀ ਆਜ ਮੈਂ ਦੀਵਾਨ ਮੇ ਚੜ ਕੇ ਗੋਲੋਕ ਮੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੂੰ। ਤੋ ਬੀਬੀ ਵਹਾਂ ਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਤਬ ਦੀਵਾਨ ਮੇ ਚੜ ਲਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਪੂ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਜੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨਿਸ਼ਠਾ, ਦਇਆ, ਭਗਤੀ, ਵਿਵਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਭਾਈ, ਆਏ ਹੈ ਸੋ ਜਾਏਗੇ, ਰਾਜਾ ਰੰਗ ਫਕੀਰ ਇਸ ਰਾਸਨ ਚੜ ਚੜੇ ਇੱਕ ਬਾਂਧੇ ਜ਼ੰਜੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਕੀ ਸਿਘਾਸਨ ਪਰ ਚੜ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਮ ਯਾਦਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ 99,000 ਯੋਜਨ ਕਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਯਦੀ ਪਾਪ ਕਰਿਆ ਤੋ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ 3 ਦਿਨ ਮੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਵਾਂ ਕੀਲੇ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਂ ਧੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸੇ ਮਾਰ ਪੜੇਗੀ, ਇਹ ਅਸਰ ਹੋਤਾ। ਅਬ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨੋਂ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੰਦ ਦੇਣਾ, ਜੀਵਨ ਮੇ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਕਡਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਸੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਭਜਨ ਗਾ ਦੇਣਾ, ਬਖਸ਼ੋ ਓਮ ਜੀ ਬੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਤੋ ਆਸੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਸ਼ਮਾ ਕਰੋ, آپ دیاوان ہو، دیا کے ساگر ہو، کرنا نیدھان ہو، سب پر مہربانی کرتے ہو، پھر کھن 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 بگاڑ پھر سمجھائیں گے ہم ہر چم. میں تو لس دن پاپ کماتا ہوں، میں تو چھوٹے تو کہہ دیا اگر میری موت نندا چور میں ہو اور جنازہ جائے تو یہ بھائی بول دینا میں تو نس دن پاپ کماتا. مت کھولو باپو جی میں کھاتا کھولو گے تو پاپ سامنے آ جائیں، کھاتا بند ہی رہنے تمہارا جیسا بھی ہو، ہوں برا یا ہوں بھلا تیرا دھوپ گہرا چکا، اب تیرے نام کا پٹا ڈال گیا ہے نا. ارے نمبری، یہ سارے نمبری بیٹھتے ہیں، نمبری بھاشا کون سی ہوتی ہے؟ مندی بھاشا نمبری آ گئی بھائی، کہتے نمبری کا مطلب یہ نہیں ہے. پیڑ دیکھے نا، پیڑ پہ نمبر لگاتا نا، نمبر لگاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے یہ سرکاری پیڑ ہیں، ان کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے، جو کاٹے گا وہ مجرم ہو جائے گا، مجرم ہو جائے گا. تو یہ سارے نمبری بیٹھے ہیں، نمبر لگے باپو کے، کوئی کاٹے گا نہیں، کوئی چھیدے گا نہیں، کوئی توڑے گا نہیں، ایسے نمبر لگا دیے میرے باپو اوم جی مہاراج نے، باپو شبدا رام جی مہاراج. اس واسطے اپنے نمبر کا دھیان رکھو، نمبر ہر نہ جائے، نمبر مل نہ جائے. باپو کے چرنوں میں یہاں بھی ہیں وہاں بھی جانا، ایسا وشواس کر کے چلنا، ایسا دل سنکلپ کر کے چلنا. باپو جی ہمارے رکشک ہیں، باپو اداس رام جی مہاراج نے اپنا جیون نرنتر لگاتار باپو چرنوں میں بتایا. آتما ہی ایسی آئی تھی، اوم جی نے بھیجی تھی نا دربار کی رکشا کے لیے، تو ایسے بولا تھا ایسا بخشا رابر شردا رام جی نے سانی جی نہ بھیج جہان کوئی نہ، ایسا رابر ایسا مار پرشت کرنے والا کوئی نہیں ملے گا بھائی، سب گمراہ کرتے ہیں، سب دھکیلیں گے سب. بھائی اوم جی نے کہا نا جب میں گرو ڈھونڈنے چلا ہوں سب گفتار کے غاری ملے، باتوں میرے جانے والے ملے، جس نے اصلی گرو دیکھا تھا وہ نہیں ملا، ملے کون؟ باپو جواہر لال سنگھ جی مہاراج. ایک منٹ میں ساری جاگتی کر دی. تو ایسے پورن گرو کے ہم بچے ہیں، باپو جواہر لال سنگھ، پرمل باپو ٹھاکر جی مہاراج، نارائن جی مہاراج. تو بھائی ان کی رتوا بنی رہے، مہاراج جی بیمار ہو گئے، اداس رام مجھے یاد ہے کرشن لال جی کی بیٹی کی شادی تھی، رشتے برات آئی تھی، بڑی تکلیف تھی مہاراج جی کو، میں ساتھ تھا، واش روم جانا ہوتا تھا، دو قدم گئے پھر واپس آ گئے، ساری رات میں لے کے پھرا ان کو، اتنی تکلیف کے بعد جو روس نہیں کی، سی نہیں کی ہے، مجھے پتا تھا کیا تکلیف ہوگی، آپ سب کو پتا. لیکن ساری رات میں نے کہا ماتا جی نیچے جگہ نہیں، جب چار ساڑھے چار پانچ بجے ڈوڈی چلی گئی سب کہتے ہیں اب تو بیشا لیٹ جاؤ، باپو جی مہاراج ماتا جی کو جگا دو، میں جو بھی کہتا ہوں لیٹ جاؤ. تو صبح ہسپتال لے گئے، بیمار ہو گئے، ہم رات کو ان کے پاس ہوتے تھے، تیرے بولتے حاجی پرانا میرے بچن کا رہتے حاجی سکھمنی صاحب کا پاٹھ کر، سویرے چار پانچ بج کے سکھمنی صاحب کا پاٹھ کرنا میں نے، اب تم گھر جاؤ. سامنے رکھی تھی فوٹو باپو شردا رام جی مہاراج پلنگ کے سامنے، ایک ہی آواز، آ جاؤ ست گرو دو گھڑی کے لیے، آ جاؤ ست گرو دو گھڑی کے لیے، میرا آداب بکتے سفر ہو گیا، میرا ارتھات میرا جانے کا ٹائم آ گیا ہے مہاراج، اب تو آ جاؤ. یہ آواہن کرتے رہے باپو شردا رام جی فوٹو سامنے رکھ کے، یہی آ جاؤ ست گرو دو گھڑی کے لیے، میرا آغاز وقت سفر ہو گیا، بس یہی گنگناتے ہوئے. جن نے شریر چھوڑا ہے ساری دلی میں، جن کو یاد ہے دیکھا ہوگا گھٹا ٹوک اندھیرا، شام کو ساری دلی میں ایسا ہو گیا رات ہو گئی ہو، بادل بجلی اندھیرا بالکل رات ہو گئی تھی، جیسے دھرتی چلا رہی ہو میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، آکاش لڑ رہا تھا یہ تو میرا آدمی ہے میں نہیں جا رہا ہوں، دھرتی اور آکاش میں جیسے لڑائی ہو رہی تھی. ایسے مہاپرشوں نے ایسے ماحول میں شریر چھوڑا ہے. مہاپرش نہ سجدوں کدے مرتے، سدا جیوندے او سنسار اترے، جدو یاد کریے تدو دین درشن، بدھے آن دے سچے پیار، سچا پیار کرو، ढूंढ रही है महाराज। इस वास्ते बापू दास राम जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि यही है, उनके नक्शे कदम पर चले की याद मनाते रहे। और आज ये रौनक, ये हमारा बेटा केवल कृष्ण बीबी इसकी धर्मपत्नी विनोद कुमारी थी, ये कहता मकान मेरा जो है ना मुझे बहुत पहले, अब तो मैं नंदा चौड़े जो पहले कहता मामा जी ये मकान मैं मंदिर को देना है। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, भाई हैं भतीजे हैं उनको दे दो, संसार में कोई अपना नहीं है, जो अपने हाथ से दान कर जाए वही पक्का है, बाकी किसी ने देना। और कई दफा मिन्नत की मैंने, ना बेटा ना, नहीं मारा। अब संयोगवश बहू रानी का भी इंतकाल हो गया, अब तो मैं खाली हूँ, सारा सामान उठा के नंदा चौर फेंका है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पकड़ो अपना अपने मान पकड़ो, क्या कर रहा है तू। ये बापू जी के नाम ये स्थान बापू गुरदास राम जी का तब स्थान रहा होगा, मंदिर वही बनते हैं जहां संतों ने तप किया होता है, अगर वह नहीं बनते हैं तो बापू गुरदास राम जी महाराज ने स्वयं यहां विराजमान होना था कि यादियां मनाई जानी थी, तभी शायद ये जगह सारी बेटे केवल ने जो है दरबार को समर्पित कर दी। प्रार्थना करनी है सारा परिवार सुखी रहे, बेटे की दीर्घायु हो, इसी प्रकार मेले लगते रहें। आप सब आए हैं तारापुर मीरापुर रामराज हसनापुर, विशेषकर मैं आभारी हूँ जगदीश जी का। सारी अब मैं कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन आज मुझे आज आज्ञा दे दो मुझे, हम जब भी गए हसनापुर इन्होंने पूरा जश्न मनाया, रथ लाए बिठा दिया, पूरा दूर दूर से संगत आई, रात के दो दो बजे कीर्तन होता रहा। मैं कहा बाबू जी इतना खर्चा करते हो, ये तो यज्ञ से भी ज्यादा बड़ा यज्ञ है। कहते मैं पूछू नहीं सवेरे बताऊंगा, बता दू इन्होंने एक पोटली निकाली, पोटली होंगी सुनो, एक पोटली निकाली उसमें मैंने मुझे हिम्मत नहीं हुई खोल के देखू, एक पट खोली मैंने, बापू श्रद्धा राम जी ने मुझे ये दिया था कि जो मर्जी खर्च करता जाओ, अक्षय पात्र जिसको हम कहते हैं, कभी घाटा आएगा नहीं। इन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए बापू के नाम पर, श्रद्धा राम जी के कुर्बान हुए ऐसे भक्तों पर, और क्या देंगे मारे सिद्धियां सिद्धियां इनकी जोड़ी में डाल गए। ये शांत रूप से भगत है, गुजे भगत है, पर दर्शन नहीं करते अपने आप को, मैं ना ही कुछ हूं नहीं कुछ आए ना बोला, तो ऐसा है मैं आपका आभारी हूं, ये कृपा बापू श्रद्धा राम जी की हुई, आज भी महान सेवा ये कर रहे हैं। और ये रिद्धियां सिद्धियां बापू ऐसे नहीं देते, बथेरे मांगने वाले हैं, जिसको योग समझेंगे जिसको पात्र समझेंगे सुपात्र समझेंगे उसको देंगे, ऐसे सबको दे रहे हैं कमी नहीं है, पर विशेष रूप से जो अति कृपा का पात्र है जगदीश जी वो हैं। बापू करे दीर्घायु हो लंबी उम्र हो, परिवार सुखी रहे, हर समय नाम की धुन में मस्त रहते हैं, कभी बोलते सुना सीधे साधे बने रहते हैं, और कमी किसी चीज की नहीं है। तो साथ संगत इनके जीवन से प्रेरणा लेनी है हमें कि भाई होंदे तान निमान रह निमानियों, सब कुछ होते भी निमाना पाना विनम्रता जीवन का विशेष लक्षण होना चाहिए। बाकी अहंकार करोगे तो भाई बड़े बड़े अहंकारिया नानक लोग अहंकार रामन कंस हिनाकर हिरण्यकश्यप कार नाम उनको हिनाकर दुष्कर्म मारे अपना रात कर आया राम जो आशा दीवार में करते हैं ना। तो भाई मारे श्रद्धा राम जी का फरमान प्रेम भक्ति प्रेम परवर चरणों से नारायण चरणों से प्रेम करो कि छवि मन में बसा लो, ओम नाम का स्मरण करो और मंत्र का जाप करो, सारे काम हो जाएंगे। आप सबका धन्यवाद। बापू साहब की जोड़ियां भरे अदंड रहे, मंगलमय जीवन हो, और कभी सपन में भी दुख ना पहुंचे सबके साथ। सर्वे संतु उषा सर्वे संतु राम सर्वे भगवान पश्यंतु माँ कष्टित भाग सवेर, हम कहते हैं ना औ अदास करें औखी घाटी बिखरा पैंडा, मेरे अंग संग होए सहाय गुरु सब संगत मिले अरदास करो मनो न विसरे वास। मोतम दीन न दीन हेतु तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम भव फिर सियावर राम जय जय हरे प्रभु राम नानक नाम चंडी कला तेरे गुण श्री गुरु राम जी महाराज आपकी सदा संत स्वामी श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सदा बापू भंडा जी महाराज आपकी बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी सदा परमन बापू ठाकुर जी महाराज आपकी सब संतन की जय धन्यवाद जय जय साहब।